नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने एक वर्ष में चालू खाते में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा, एक वित्त वर्ष में बैंकों से इतनी अधिक नगद जमा या निकासी या फिर चालू खाता खोलने या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में नगद क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन या बायोमेट्रिक आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंकों, डाकघरों और सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में कुल 20 लाख रुपए या उससे अधिक के जमा और निकासी के लेन देन की रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। अभी तक एक दिन में 50,000 रुपए या उससे अधिक की नगद जमा राशि के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है, लेकिन अब इन नियमों के साथ पूरे वित्त वर्ष के लिए 20 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की मंशा उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की है जो ज्यादा रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है, इसीलिए वे बिना टैक्स चुकाए आसानी से भाग जाते हैं और इनके पास ही काला धन होता है। नए नियमों के लागू होने से सरकार के लिए मनी सर्कुलेशन का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में जांच एजेंसियों का मुख्य फोकस ठगे गए निवेशकों की धनराशि वापस करने पर होना चाहिए। न्यायमूर्ति एस के कॉल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने हीरा गोल्ड मामले में तेलंगाना और गंभीर धोखाधड़ी जांच एजेंसी SFIO की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। कंपनी पर निवेशकों से 5,600 करोड़ रुपए जमा करने का आरोप है। पीठ ने कहा, मुख्य फोकस दावों, संपत्तियों को सत्यापित करने और ये देखने के लिए होना चाहिए कि निवेशकों को अच्छी तरह से उनका धन कैसे वापस हो। शीर्ष अदालत ने हीरा गोल्ड एग्जामिन के प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख की जमानत रद्द करने की SFIO की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है कि सरकार के लगभग 16,100 करोड़ रुपए के बकाए को कंपनी में 33% की हिस्सेदारी में बदलने का काम आने वाले हफ्तों में पूरा हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के CEO रविंदर टक्कर ने कहा कि दूरसंचार सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में कंपनी ने सरकारी बकाया को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है। दूरसंचार विभाग डॉट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की कंपनी में 33% हिस्सेदारी होगी और प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 74.99% से घटकर 50% हो जाएगी। टक्कर ने कहा, हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में रूपांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुधार पैकेज के तहत दूरसंचार विभाग ने कंपनी को करीब 16,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी लौटा दी है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के बेहतर प्रदर्शन के चलते मार्च 2022 में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या बढ़कर 116.69 करोड़ से अधिक हो गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अपनी मासिक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। इस दौरान भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने मोबाइल फोन के साथ ही फिक्स लाइन सेवा खंड में नए ग्राहक जोड़े। ट्राई की ग्राहक रिपोर्ट में कहा गया, भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या मार्च 2022 के अंत में बढ़कर 116.69 करोड़ हो गई, जो फरवरी 2022 के अंत में 116.60 करोड़ थी। ट्राई की रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च और फरवरी के बीच शहरी टेलीफोन ग्राहक 64.77 करोड़ से घटकर 64.71 करोड़ रह गए, जबकि इस दौरान ग्रामीण ग्राहक 51.82 करोड़ से बढ़कर 51.98 करोड़ हो गए। मार्च में वायरलेस ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 114.2 करोड़ हो गई, जो फरवरी में 114.15 करोड़ थी। समीक्षाधीन माह में भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 के अंत के 635.36 अरब डॉलर से घटकर इस वर्ष मार्च महीने के अंत तक 607.31 अरब डॉलर रह गया। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में 28.05 अरब डॉलर की गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसे पारदर्शिता और खुलासे के स्तर में सुधार की दृष्टि से प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट हर साल मार्च और सितंबर के अंत में तैयार की जाती है। वर्तमान रिपोर्ट इस पूरी श्रृंखला में 38वीं रिपोर्ट है, जो मार्च 2022 के अंत की स्थिति के संदर्भ में है। बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया, सितंबर 2021 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 635.36 अरब डॉलर था, जो मार्च 2022 के अंत तक घटकर 607.31 अरब डॉलर रह गया। अप्रैल में महंगाई दर के 8 साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंचने के बाद चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में 1% की वृद्धि कर सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ये संभावना जताई है। क्रिसिल की शोध इकाई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति बढ़कर 6.3% पर पहुंच सकती है, जो केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर 6% से अधिक है। रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए रेपो दर को 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। अगस्त 2018 के बाद पहली बार रेपो दर को बढ़ाया गया। क्रिसिल ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति व्यापक हो सकती है, इससे खाद्य वस्तुओं, ईंधन और मुख्य क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए संभावना है कि रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में 0.75% से 1% की बढ़ोतरी करे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।